भगवान वीरो मंगलम गौतमो गई मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान करी मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय मोक्ष मार्ग एक वितराग भाव ही है इसलिए वितरागी संतों ने चारों योगों के माध्यम से वितरागता का ही उपदेश दिया है उसी का पोषण किया है परंतु तीन अनुयोगों की शैली ऐसी है कि उसमें वितराग भाव का पोषण अपनी बुद्धि से रुचि से स्वयं करना होता है। जैसा कि कल भी मैंने कहा था द्रव्यान योग में तो सीधी वो बात आती है परंतु अन्य अनुयोगों में अन्य तरीकों से आती है। अपन ने आठवें अधिकार के आधार से ये समझने की कोशिश की है कि किस तरह चरणान योग हमें भले बाह्य क्रिया की प्रधानता से बात करे तो भी उसका संकेत उसका इशारा वितराग भाव की ओर ही होता है। मोक्षमार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 279 से थोड़ा अपन विषय को और आगे बढ़ाते हैं। 279 पेज है। उसके पहले मैं एक उदाहरण से चारों अनुयोगों की समझ लीजिए शैली पर थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा और ये उदाहरण प्रायः डॉक्टर साहब भारेली जी जब भी चार अनुयोगों वाला प्रकरण लेते हैं तो वे इसी उदाहरण से उस बात को स्पष्ट करते। बहुत बढ़िया उदाहरण है, बहुत फिट होता है कि एक बच्चा है 5-7 बरस का, स्कूल में कुसंगति से उसे गाली देने की आदत पड़ गई। अब उसकी माँ उसको समझाती कि ये बहुत बुरी बात है, गाली नहीं देना चाहिए, परंतु आदत पड़ गई तो वो छूटे नहीं, तो कभी कभी वो उसे एक दो चांटे भी लगा दे, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकला। एक बार वो माँ के साथ में कहीं जा रहा था, अचानक उसके पैर में कांटा लग गया तो उसने चिल्लाया कि माँ माँ मेरे पैर में कांटा लग गया। अब माँ को मौका मिल गया उसने सोचा जो काम चांटे से नहीं हो पाया वो काम कांटे से निकाल लेना चाहिए। तो उसने कहा देखो जो लोग अपनी बहन को गालियां देते हैं उन्हें कांटा लग जाता है, तो अगर तुम गाली देना छोड़ दोगे तो तुम्हें कांटा भी नहीं लगेगा। न जाने कैसे उसकी भली होनहार थी और उसने बात मान ली और कोशिश करके समझ लो गाली निकालना बंद कर दिया। उसके पहले वो हमेशा कहती रहती थी देखो पड़ोसी में जो बच्चा है उसकी आज बहुत पिटाई हुई है, तो क्योंकि वो भी ऐसी गालियां बकता है, ऐसी तुमको भी ऐसी सजा मिलेगी, तो भी समझ लो उसकी समझ में नहीं आता। लेकिन उस दिन आ गया। अब अपन थोड़ा आगे बढ़े कि उसने गाली देना तो बंद कर दिया, लेकिन एक बार फिर से कांटा लग गया, क्योंकि कोई गारंटी तो है नहीं कि जो सज्जन लोग हैं, अच्छे वचन बोलते, उन्हें कांटा नहीं लगेगा, ऐसा तो कोई नियम है नहीं। तो फिर से कांटा लग गया। तो उसने कहा, माँ मुझे कांटा लग गया। उसने कहा, बेटा जो लोग देख कर नहीं चलते हैं उन्हें कांटा लग जाता है, तो देख के चलना चाहिए, नीचे देख के चलना चाहिए, ठोकर से भी बचेंगे, कांटों से बचेंगे, गड्ढों से बचेंगे। तो समझ लीजिए उसने ये बात भी मान ली और देख के चलने लगा, एक बार फिर कांटा लग गया। तो अब क्यों लगा? उसने पूछा, माँ अब क्यों कांटा लगा? अब तो मैं देख के चल रहा हूँ। तो माँ जवाब देती है, बेटा देख के चलने के बावजूद भी अगर पाप का उदय होवे तो कांटा लग जाता है। तो अपने को पाप कार्यों से बचना चाहिए और पुण्य कार्यों में लगना चाहिए। तुम रोज पाठशाला जाया करो, रोज मंदिर में दर्शन करने जाया करो, अब तो कांटा नहीं लगेगा। अब पाठशाला जाने लगा, मंदिर जाने लगा, इत्यादि इत्यादि काम करने लगा, एक बार फिर लगना था तो लग ही गया। तो उसने माँ से पूछा कि हमने तुम्हारी इतनी बातें मानी, बहन को गाली देना भी बंद किया, नीचे देख के चलना भी चालू किया, और मंदिर भी जाने लगे, पाठशाला भी जाने लगे, तो फिर भी कांटा लग गया। उनका बेटा चाहे कितने पुण्य कार्य करो, लेकिन जब कांटा लगने वाला होता है तो लग ही जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इन चारों प्रकार के प्रसंगों में अपने को प्रत्येक अनुयोग की शैली झलकती। जब उसने कहा कि गाली नहीं देना चाहिए, तो वो दुराचरण से बचाना चाहती है, ये चरणानुयोग की शैली है। या समझ लो जब उसने कहा देख के नहीं चलना चाहिए, तो ये चरणानुयोग की शैली है। और उसने कहा पुण्य कार्य करना चाहिए, क्योंकि पाप का उदय होता है तो कांटे लगते हैं, तो पुण्य पाप के उदय की बात की उसने, तो ये करणानुयोग का संकेत हुआ। इसी तरह से जब कहा कि लगने वाला होता है तो लग ही जाता है, तो ये द्रव्यानुयोग की बात है। और प्रथमानुयोग के तो चाहे जब कहती है, देखो आज उसकी बहुत पिटाई हुई है, है? तो ये एक जैसे कि आज देवेंद्र जी ने भी काफी अनेक उदाहरणों से ये बात स्पष्ट की है। आप देखिए इसमें पेज नंबर 279 पर बहुत सुंदर ये अंश हैं इसमें। तथा निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है। क्रिया की बात जरूर करते हैं, साथ में ये भी बताते हैं कि देखो भाई अकेली क्रिया से कुछ नहीं होता, जैसी क्रिया है वैसे परिणाम होवे तो पुण्य बनता है, अन्यथा नहीं बनेगा। बाह्य क्रिया की बात है ना। वहां देखिए ये शैली गुरुदेव के प्रवचन शैली में सहज रूप से झलकती है, निश्चय सहित व्यवहार वाली। वो कहते हैं कि 5 लाख आपे, करोड़ आपे, मंदिर बनावे, पर उससे धर्म बिल्कुल नहीं होता, थोड़ी मंद कसाय होवे तो पुण्य बंद होता है। अब बोलो इस क्रिया की बात है कि परिणाम की बात है? थोड़ी मंद कसाय होवे उसमें भी मान करे कि मैंने दिया तो पाप का ही बंद होगा, और मंद कसाय रखे तो पुण्य बंधेगा। यानी वो अकेली क्रिया से पुण्य बंधेगा, इसका निषेध करना चाहते हैं। और मंद कसाय होगी तो पुण्य बंधेगा, तो निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते। क्रिया की प्रधानता वाला उपदेश माने व्यवहार प्रधानता वाला उपदेश, क्योंकि क्रिया पर ही पुण्य पाप के कारण का उपचार किया जाता है। समझ में आया? या क्रिया का कर्ता जीव को कहा जाता है, बाह्य क्रिया का, शरीर आदि क्रिया का। इसलिए वो उसकी प्रधानता वाला उपदेश, वो व्यवहार की प्रधानता वाला उपदेश। लेकिन परिणाम का कर्ता जीव स्वयं है, इसलिए परिणाम की प्रधानता वाला उपदेश वो निश्चय वाला उपदेश। वो निश्चय सहित व्यवहार में परिणाम भी है और क्रिया भी है। ये समझने लायक बात है। देखो, उसके उपदेश से, किसके उपदेश से? परिणामों की प्रधानता वाले उपदेश से है, सबसे ऊपर है। तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा ये भी लिया साथ में चरणान योग में, यानी चरणान योग और द्रव्यान योग में मैत्री बहुत जबरदस्त है। यहाँ तो जीव के परिणामों को भी चरणान योग में ले लेते। समझ में आया? सब जगह कोई बाह्य क्रिया ही होती है, ऐसा नहीं है। तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा वह वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे, वहाँ परिणाम के अनुसार बाह्य क्रिया भी सुधर जाती है। ऐसा निमित्त निमित्त संबंध है। आपने उसमें सुना होगा हमारे क्रिया परिणाम और अभिप्राय में है, परिणाम सुधरना बिगड़ना का ख्याल नहीं रखता, तो क्या मतलब है? तो यहाँ से लिखते हैं बाह्य क्रिया सुधर जाती है, तो बाह्य क्रिया सुधरती तो क्रिया की सुधार देगा अर्थ क्या है? जिन क्रियाओं के माध्यम से विषय कषाय का पोषण हो, विषय कषाय की पूर्ति हो, पाप आश्रय होवे, वो क्रियाएं बिगड़ी क्रियाएं। समझ में आया? चरणानुयोग की शैली है। इसके विरुद्ध जिन क्रियाओं के माध्यम से धर्म मार्ग में लगे, धर्म मार्ग के चांस हो, वीतरागता के चांस हो, वीतरागी वातावरण हो, वो क्रिया सुधरी हुई क्रिया। यहाँ क्रिया का सुधरने का मापदंड ये। भूमिका के अनुसार भी अशुभ क्रिया वो सुधरी हुई नहीं मानी जाएगी, भले उसकी भूमिका के अनुसार। लेकिन जिन दर्शन है, पूजन है, स्वाध्याय है, दान है, ये क्रियाएं सुधरी हुई क्रियाएं कही जाती हैं। जो एक नियम बताया, परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है। अरे क्रिया से जो तो परिणाम की गारंटी नहीं है। क्या बोला? तो क्रिया अगर हम ठीक कर रहे हैं, ये क्रिया कोई क्यों करेगा ठीक? दोनों परिस्थितियां बन सकती हैं। जैसे कोई दान दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्यों वाला फार्मूला लगाओ, क्या करे? लोग आए हैं, अपील हुई है, अपना ऊंचा नाम है, तो अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए देना पड़ता है। तो क्रिया तो हो रही है दान की, एक काम परिणाम हो रहा है मान का। समझ में आए ना? इसी तरह और भी लगा लेना, जो भी यथा योग्य जो विकृतियां होती हैं, व्रत उपवास आदि करे, दिखाने के लिए करे, बदनामी से बचने के लिए करे, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, समाज में नाम कैसा खराब होएगा कि ऐसा भी नहीं करते, ऐसा भी नहीं करते। तो क्रिया तो सुधरी कही गई, लेकिन परिणाम बिगड़ गए। तो क्रिया से परिणाम सुधरने की गारंटी नहीं मिलती, जबकि उपदेश तो ऐसा भी दिया जाता है कि आप तो ये क्रिया करो तो परिणाम सुधरने का अवकाश है, ऐसा भी इसमें आएगा। ये गारंटी नहीं है। लेकिन तत्व ज्ञान और वैराग्य दो बातें ही ना, तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा वह वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे, यानी वीतराग भाव के लिए प्रयत्नशील होवे, तो परिणाम सुधरेंगे तो क्रिया वैसी ही होगी जैसे परिणाम। ये है चरणानुयोग की शैली। इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते, जैसा शब्द लगाया मुख्य उपदेश देते। क्रिया की तरफ से बात करेंगे वो गौण समझना, और परिणाम की तरफ से बात करेंगे वो मुख्य समझना। निष्कर्ष क्या निकला? इस प्रकार दो प्रकार के उपदेश में जहाँ व्यवहार का ही उपदेश हो, अब देखना अकेले व्यवहार के उपदेश में क्या बताते हैं। सम्यक दर्शन के लिए अनंत देव निर्ग्रंथ गुरु दया धर्म को ही मानना और को नहीं मानना, अभी बड़ी विचित्र बात है। मानने को परिणाम में लेना कि क्रिया में लेना? उन्हें तो व्यवहार के उपदेश में दिया, व्यवहार का उपदेश है। यद्यपि मानना तो परिणामों में होता है, ध्यान देना जरा, लेकिन उस मान्यता की अभिव्यक्ति जीवन में दिखाई देती। जिन मंदिर ही जा रहे हैं, छेड़ाला में है ना, गुरु कुदेव कुब्रस सेवक की नहीं प्रसन्न होते रहे है, जिन मुनि जिन तृत बिन कुबरादित नमन करे है, इसको एक क्रिया को भी शामिल करते हैं मानने में है। फिर व्यवहार में क्यों लिया? क्योंकि ये स्वभाव रूप क्रिया है, ये जीव के परिणाम है, लेकिन स्वभाव रूप परिणाम। सम्यक दर्शन में नीचे कहेंगे अंतरंग की बात, तो औरों को नहीं मानना और जीवादि तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहाँ है उसका श्रद्धान करना, ध्यान दीजिए व्यवहार में ले रहे ये सब, और शंकादि 25 दोष न लगाना, निशंक आदि अंगवा संवेग आदि गुणों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते। अब भले उन्होंने क्रिया की प्रधानता से और स्वभाव की प्रधानता से उपदेश दिया, मित्रता का ही इसमें गुरु को देव से बचाया, समझ में आया? निर्ग्रंथ गुरु की उपासना है तो अन्य जो खोटे गुरु हैं, कुवेश धारी हैं, धारे कुलिंग लई महत्भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, उनसे बचाया। इस तरह ये जैन दर्शन का जो व्यवहार पक्ष है वो भी गरीब मिथ्यात्व और पापों से बचाता है, इसलिए वो वीतरागता की दिशा की ओर ले जाता है, मतलब दिशा बदल देता है, इससे चरणान योग से वीतरागता निकलती। आप ध्यान दीजिए, अपना जो विषय है उसका केंद्र बिंदु, अनुभवों को डिटेल में पढ़ना ये अपना सब्जेक्ट नहीं है। तो चरणान योग का कोई ग्रंथ लेके बैठ जाए, कि चरणान योग का कोई टॉपिक लेके बैठ जाए, अनुव्रत महाव्रतों के विस्तार से चर्चा करने लगे, वो नहीं। संपूर्ण चरणान योग में जो विषय वस्तु है वो वितरकता की ओर कैसे ले जाती है उसकी बात करनी। देखो सन्निशंक आदि अंग ये आचरण की बात है, अपने अष्टपाद पढ़ा है उसमें ये निशंक आदि अंगों को कायने लिया है सम्यक्तवा चरण चारित्र, क्या चौथे गुण स्थान में भी संयम नहीं होता लेकिन चारित्र होता है, असंयम गुण स्थान है लेकिन सम्यक्तवा चरण चारित्र है। श्री निशंक आदि अंग और प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक पालन करना चाहिए, ऐसी भी भाषा चरणान योग में बोली जाती है। जो सिद्धी बात हुई सम्यक दर्शन की, अभी सम्यक ज्ञान की, तथा सम्यक ज्ञान के जिन मत के शास्त्रों का अभ्यास करना, वाह ये वाह क्रिया है, बिल्कुल स्वाध्याय की क्रिया है, लेकिन उसमें भी भीतरात्मा कहाँ बिठा दी उन्होंने, जिन मत के शास्त्रों का अभ्यास करना, क्योंकि एक भीतरागी देव की वाणी ही ऐसी है जो वितरागता का पोषण करती, जो आप जो देव स्वयं वितराग नहीं है वो तो क्या उपदेश होता है आप सब जानते हैं, उसका जटिल करने से क्या फायदा है, मेरी शरण में आओ, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारा भला कर दूंगा इत्यादि इत्यादि है। भगवान ने मनुष्य को इसलिए ही बनाया है, सृष्टि की रचना इसलिए की है। जहाँ ऐसी बातें आती हो वहाँ विकराकता कहाँ से आएगी। इन्होंने कहा जिनमत के शास्त्रों का अभ्यास करना, ये आचरण का पक्ष है, ये आचरण की बात है, क्रिया की बात है, स्वाध्याय की क्रिया है। जैसे भगवान की भक्ति दया दान पूजा ये क्रिया है, वैसे स्वाध्याय भी क्रिया है। ठीक है, अर्थ व्यंजन आदि अंगों का साधन करना, ध्यान दीजिए भाई। ऐसे बहुत दिनों पहले पढ़ा था, सब बातें ख्याल में भी नहीं रहती है, जब दोबारा पढ़ो तो सब ख्याल में आती है। इस बात में क्यों विशेष ध्यान दिला रहा हूँ, तो निशंक आदि आचरण जो है, निशंक आदि अंग है आठ अंग, वो सम्यक्त का आचरण है। और सम्यक ज्ञान के जो आठ अंग है, व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, उपधानाचार, अनिन्नवाचार इत्यादि, ये ज्ञान का आचरण, ज्ञान संबंधी आचरण, समझ में आया ना। इसमें परिणाम और क्रिया मिक्स है, मूल चीज तो परिणाम है, जब जैसा प्रसंग होता है तब वैसा वो क्रिया में आता है। जो एक जैसे नाम गुरु न छिपाई, अनिन्नवाचार, नाम गुरु न छिपाई, गुरु का नाम नहीं छिपाना चाहिए, जिससे जो सीखा है तो वो उसको प्रकट करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटा तो गुरु का नाम बताएगा नहीं, समझ में आया है। लेकिन उसका भाव हमेशा 24 घंटे ये बना रहता है कि मुझे गुरु का नाम नहीं छिपाना है। अब जब प्रसंग आया, मान लो वो चर्चा करेगा, प्रवचन करेगा, कोई मित्रों में सहधर्मियों में कोई बात आएगी तो कहेगा ये बात मैंने फलानी जगह फलानी व्यक्ति से सुनी, ये समझ में आए। वो क्रिया में तो कभी कभी उतरेगा, लेकिन परिणामों में वो जीव, वो जो बात है वो निरंतर बनी रहे। और सम्यक ज्ञान में तो इतना ही लिखा, आठ अंगों का आचरण, और सम्यक चारित्र के अर्थ एक देश व सर्वदेश अहिंसादि पापों का त्याग करना, ये आया अनुव्रत महाव्रत। यानी अपन समझते हैं बाह्य क्रिया केवल चारित्र से जुड़ी होती है, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन की भी निशांके दादी जो है वो सम्यक दर्शन को व्यक्त करने वाली बाह्य क्रिया है, गारंटी नहीं है, ये व्यवहार है ना, व्यवहार तो व्यवहार से बात की है। और बिना वास्तव में जब तक अंदर में सम्यक न हो तो परिणामों में व्यक्ति विसंगता वगैरह आती भी नहीं, परिणाम में नहीं आती तो क्रिया में भी नहीं आती। अकेली बाहर से ही समझ लो कोशिश करे तो जैसे होता है वैसा समझने लायक। व्रतादि अंगों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते, और किसी जीव के विशेष धर्म का साधन न होता जानकर एक आखड़ी आदि का ही उपदेश देते। ये उदाहरण कल अपनी चर्चा में आ गया था, कोई ऐसा भोला जीव हो गए, हीन कुल का हो गए, सब समागम जिसके पास नहीं हो गए, प्रभु भी आ जाए मुनिराज के पास, प्रभु मेरा उद्धार कैसे हो मुझे बताइए। तो बताया था ना कौए का मांस छुड़ाने वाला, भील को कौए का मांस छुड़वाया, ये ग्वाले को नमस्कार मंत्र जपने का उपदेश दिया, ग्रस्त को चैत्यालय पूजा प्रभावना आदि कार्य का उपदेश देते हैं। वो ग्रस्तों को भी इसमें शामिल कर लिया है, अब दिन रात धंधे व्यापार में फंसे रहते हैं, हैं वाणिया ने वक्त लकी मल तो ऐसे लोगों के लिए भी गुंजाइश है भैया, कुछ नहीं तो कम से कम जब प्रभावना का प्रसंग बने, तत्व प्रचार का प्रसंग बने तो उसमें अपनी लक्ष्मी का उपयोग करना, किसी न किसी बहाने उसका कनेक्शन थोड़ा बहुत वितरागी भावों के निमित्तों से बना है। तो ये आप समझ लीजिए इनडायरेक्टली वितरागता की ओर ले जाने का ही प्रयास है। ठीक है, जैसा जीव हो वैसा उपदेश देते, ये बड़ी विचित्र बात, जैसा जीव हो वैसा उपदेश देते मन है, वो तत्व नहीं बदल जाता उससे, लेकिन जिस भूमिका में हो उस भूमिका के अनुसार उसे कौन सी क्रिया करने लायक है ये समझ करके उस क्रिया से जोड़ते, उस क्रिया के माध्यम से धर्म से जोड़ते, ऐसी शैली है। ये कौन से प्रकरण की बात हुई, जहाँ व्यवहार का ही उपदेश हो, जो ऊपर के पैराग्राफ में लिखा दूसरे पैराग्राफ में, जहाँ व्यवहार का ही उपदेश हो, और अब क्या कहते हैं, जहाँ निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो वहाँ सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते। अभी तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये व्यवहार पर भी लागू पड़ती है परिभाषा, और निश्चय सम्यक की भी परिभाषा। यहाँ कई दफे चर्चा आई है, राम जी भाई ने तत्वा सूत्र में इस सूत्र की जो टीका लिखी है तो उन्होंने इसको निश्चय सम्यक में लिया है, तो निश्चय सम्यक का भी वही अर्थ है, नौ तत्वों में छुपी हुई एक चैतन्य ज्योति, या जो तेरहवीं गाथा में कहा भूतार्थ से जाने हुए नौ तत्व सम्यक हैं, और ये निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है, और ये चरणान योग की शैली। वास्तव में देखा जाए तो दृज्ञान योग में तो करने का उपदेश है ही नहीं है, वहां तो बंद और मुख से भी रहित है, तो अपने पर्याय का भी करता नहीं है, ऐसे अकर्ता स्वभाव की दृष्टि की बात है, तो ये फिर तत्व श्रद्धान करो, ये करो वो करो, ये बात कहाँ से आएगी, ये निश्चय सहित व्यवहार में आए। सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं, इसको भी समझ लो, तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करा, क्या फर्क पड़ गया, यथार्थ तत्वों का श्रद्धान और तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, इन दोनों में क्या अंतर रहा। नवीन भाई चिट्ठी आ जाएगी आपके पास देखो यथार्थ तत्व, तो ये तो जीव आदि जो सात तत्व हैं या नौ तत्व हैं, ये जिन्हें भगवान द्वारा कहे गए हैं, तो यही वास्तविक तत्व है, ये यथार्थ। इसके द्वारा कोई 25 तत्व कहता है, कोई सांसों में कुछ कहा है, किसी में कुछ कहा है, वो तत्व निरूपण होता है। तो यथार्थ तत्व माने भगवान जिनेन्द्र के द्वारा कही गई तत्व व्यवस्था, ठीक है। अब यथार्थ शब्द को श्रद्धान के बगल में रखो, यथार्थ श्रद्धान, तो अकेला विकल्पात्मक श्रद्धान नहीं, अकेला परंपरा से श्रद्धान नहीं, हमारे शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, हमारे गुरु ने तो ऐसा बताया है, हमारे कुल में तो ऐसा माना जाता है, ऐसा नहीं, अंदर में यथार्थ निर्णय करके प्रतीति करना, उसका नाम है यथार्थ श्रद्धान। तो तत्व में भी यथार्थता होनी चाहिए और श्रद्धान में भी यथार्थता होनी चाहिए। देखो उनका जो निश्चय स्वरूप है, किनका, इन तत्वों का, तत्वों में भी डबल है, निश्चय और व्यवहार, निश्चय और व्यवहार है। जीव में निश्चय शुद्ध नहीं का विषय जो अपने आया भी अड़तीसवीं गाथा में आया ना, जीवादि बाह्य तत्व हैं वो ही हैं, और आत्मा के लिए एक आत्मा ही उपाधेय है, जो भेद रूप हैं वो व्यवहार में चले गए, समझ में आया। द्रव्य आश्रव है उसको आश्रव कहना, वास्तव में वो व्यवहार है। क्यों है व्यवहार, आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत कने निर्वेरे, ठीक है। तो आश्रव दुख के कारण है, ये निश्चय स्वरूप है आश्रव का, तो कर्म दुख के कारण है क्या, आश्रव को दुख का कारण माना तो क्या जल कर्म आते हैं इनसे जीव दुखी होता है क्या, जीव तो अपने रागादि भाव से दुखी होता है, तो निश्चय से तो रागादी भाव ही आश्रव है, ये निश्चय स्वरूप। लेकिन उसके निमित्त से कर्म आते हैं, द्रव्य बंध होता है, तो उसको भी व्यवहार से आश्रव कह दिया। यानी द्रव्य आश्रव, द्रव्य संवर, द्रव्य बंध, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, ये सब व्यवहार का कथन। समझ में आया? ये जीव के परिणामों का ज्ञान कराने के लिए ये सारा कथन किया जाए। व्यवहार में प्रतिपादक है, निश्चय में प्रतिपाद्य है। तो उनका जो निश्चय स्वरूप है तो भूतार्थ है, मोक्ष में कैसे लगेगा? तो मोक्ष माने परिपूर्ण शुद्ध रूप अवस्था, गुरुदेव कहते हैं आनंद की पूर्णता की प्राप्ति, राग आदि की पूर्ण हानि। तो ये सर्वज्ञता, विकराकता, अनंत चतुष्टय, ये मोक्ष है, ये वास्तविक मोक्ष है। ख्याल में आया? और कर्मों से छूट गया उसको मोक्ष कहना ही के व्यवहार, ऐसे दोनों लगाना हर एक तत्व में। ऐसे श्रद्धान सहित क्या सातों तत्वों का निश्चय पक्ष भी जानना और व्यवहार पक्ष भी जानना, ऐसे श्रद्धान सहित वह स्वपर भेद, स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा परद्रव्य में रागादि छोड़ने के प्रयोजन सहित उन तत्वों का श्रद्धान करने का उपदेश देते। बहुत मार्मिक पंक्ति है ये। देखिए जो मूल धारा है तत्व श्रद्धान की, जिसे उन्होंने नौवें अधिकार में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन वाला जो प्रकरण है उस पर बहुत बल दिया है, तत्वार्थ श्रद्धान पे क्यों दिया है उसका खुलासा बहुत विस्तार से वहाँ है। वहाँ तो स्थिति की तरफ से प्रश्न भी उठाया है। सम्यक दर्शन के तो कई लक्षणों की चर्चा है, आप अकेला तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को ही मुख्य क्यों करते हो? ठीक है, तो उन्होंने वहाँ उसका खुलासा किया, यहाँ उसका बीज डाला है। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा संकेत फिर से देखना। स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा, स्वपर भेद ज्ञान क्यों कराते हैं? ये देह मैं नहीं हूँ, देह की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये स्त्री पुत्र इत्यादि ये सब बाह्य परद्रव्य है, लक्ष्मी संपत्ति इत्यादि जड़ है, इंद्री के भोग मधुर विषसम लावण्यमयी कंचन काया, क्या है ये सब कुछ जल की क्रीड़ा है और मैं कौन हूँ? मैं चेतन और ये जल, ऐसा भेद ज्ञान क्यों करना? पर द्रव्य में रागादि छोड़ने के प्रयोजन सहित। तो पर द्रव्य में रागादि यानी पर द्रव्य जैसा है वैसा जानना, ये जानना ही वितरकता का कारण बनता है। क्या बोला? जो जैसा है वैसा जानो, जड़ को जड़ जानो, चेतन को चेतन जानो, अपने को अपना जानो, पर को पराया जानो, हो गया। अब जो पर है, कभी अभी पहले भी अपने यहाँ ये चर्चा बहुत आई कि जिसको वास्तव में पर मान लिया तो फिर उसके प्रति राग द्वेष करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। लोक में भी आप देखिए, अपना बेटा 10,000 माइल दूर अमेरिका में बैठा हुए तो भी उसके निमित्त से राग द्वेष यहाँ होते रहते, चिंता लगी रहती है, फोन आते हैं, फोन करते हैं, बातचीत करते हैं, संपर्क बनाए रखते हैं, वो भले कितनी दूर हो गए, ये अपनापन है तो राग जरूर होगा। और पड़ोसी के बेटे के प्रति राग नहीं है तो कभी दिव्या क्या बात है बेटा, बहुत दिनों से दिखे नहीं, कहीं बाहर गए नहीं? नहीं अंकल जी, एग्जाम चल रहे। अच्छा अच्छा, ठीक से पढ़ाई करना, हो गया काम। समझ में आया? पड़ोस में रहने वाले से कितना अटैचमेंट और अपने बेटे से कितना अटैचमेंट, तो ये सब अपनेपन का खेल है भैया। तो ये सात तत्वों का श्रद्धान में मूल जो भावना है वो यही है कि पर को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। तो पर को पर जाना तो पर में रागादि नहीं करना, और आश्रव को जानना क्यों? तो आश्रम दुख रूप है ऐसा जानकर अपने को उससे भिन्न अनुभव करना। तो पूरी जो तत्वार्थ श्रद्धान की व्यवस्था है वो भेद ज्ञान पूर्वक जीत रास्ता उत्पन्न करने के लिए। कितना सुंदर विवेचन है, ये शैली है पूरे चरणान युग की, पॉलिसी मेकर उसकी शैली है वास्तव में। देखो ऐसे श्रद्धान से अनंत आदि के सिवा अन्य देवादि झूठ भाषित हो तब स्वयमेव उनका मानना छूट जाता है, उसका भी निरूपण करते। फर्क समझ में आया थोड़ा ऊपर और नीचे वाले विश्लेषण में? ऊपर तो डायरेक्ट कहा था व्यवहार की प्रधानता में कि अनंत देव निर्ग्रंथ गुरु दया धर्म औरों कोई औरों को नहीं मानना, इनको ही मानना। अच्छा एक बात सोचो, ये मानने का क्या मतलब? हम तो पंच परमेश को ही मानते, हम तो अनंत को ही मानते, क्या मानते? मानने का क्या है कि मोक्ष मार्ग में यही सच्चे निमित्त हैं, ऐसा मानना। समझ में आया? मानना मतलब उसके स्वरूप को यथार्थ जानना, वैसे ही प्रतीति करना। अच्छा कुदेवों को मानना कि नहीं मानना? आज बात आई थी पद्मावती की है, पद्मावती को मानना कि नहीं मानना? क्यों नहीं मानना? मानना, अरे वो फलानी देवी है, भवनवासी देवी है, ऐसी ऐसा मानना है। कोई भूत प्रेतों को मानते थे, क्यों नहीं मानना? वे बेचारे दुखी हैं। समझ में आया ना? वे भूत जंतर जाति के हैं, ये है वो है, देवों का जंतर मतलब जैसा स्वरूप है वैसा जानने पूर्वक मानना, वो सच्चा मानना है। या अपने आप मानने का मतलब उसको नरियल चलाना, तो उसकी पूजा करना, उसकी मान्यता करना, तो ये अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो फिर मैं समझ शिखर जी की वंदना करूंगा, ऐसा मानना। समझ में आया ना? मन्नत मांगना ये दुनिया में चलता है ना, ये ऐसा मानना नहीं होता। पंच परमेश्वरी वीतरागी हैं और वीतरागता का ही जगत को उपदेश देते हैं, तो उनके वीतरागी स्वरूप की प्रतीति करना, श्रद्धा करना, उसी का नाम मानना है वास्तव में। तो ऊपर तो उन्होंने सीधे अनंत देव निर्ग्रंथ गुरु दया धर्म को मानना ही व्यवहार उपदेश में दिया, और यहाँ जिसको सात तत्व का श्रद्धान है, जिसको मोक्ष तत्व का श्रद्धान है, जिसे आश्रम आदि का भी श्रद्धान है, तो वो कुदेवों का पोषण करे, कुदेवों का इसकी भी श्रद्धा रखे, यानी उन्हें भी मोक्ष मार्ग में निमित्त माने, उन्हें भी अपने भला होने में निमित्त माने, ये कैसे हो सकता है? मेरे पंडित जी लिखा ना, अन्य देवादी झूठ भाषित, झूठ झूठ मतलब जैसे झूठ भाषित होते हैं, वे मोक्ष मार्ग में निमित्त हैं, ये बात झूठी। उनका अस्तित्व बहुत से तो ऐसे हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं है, अपने सामने कितने सारे खड़े हुए और कितने सारे चले गए। समझ में आया? नए नए दो पांच दस साल में कोई कोई नया खड़ा ही हो जाता है, उसके ऊपर एक आध फिल्म बन जाएगी, वो करोड़ों रुपया कमा लेंगे, है जनता में उसका प्रचार हो जाएगा। और बड़ी विडम्बना है, जिस व्यक्ति ने स्वयं को कभी भगवान नहीं कहा, अपने पड़ोस की बात कहता हूँ। समझ में आया नरेंद्र भाई? जिसने स्वयं को कभी भगवान नहीं कहा, उसके भक्तों ने उसे भगवान बना दिया, और उनके नाम पर समझ लो अरबों रुपए का फंड आ रहा है, और बड़े इंटरेस्ट चल रहा है, बड़ा नाम हो रहा है, और ये हो रहा है। जो जीवन भर सारे देश में रहा, बंद कसाई होंगे, समझ में आए? जैसे कि चरित्र बताते हैं तो थोड़ी बहुत वृद्धि वृद्धि होगी, हो जाती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके निमित्त से दो चार दस जीवों का भला भी हो गया होगा, लौकिक भला। लेकिन जिसने जीवन में कभी सोने को हाथ नहीं लगाया होगा, उसके लिए सोने का सिंहासन बनाया जाता है। दुनिया में क्या चलता है, बिल्कुल मोह के नशे में जो न हो गए सब थोड़ा है, ऐसी है व्यवस्था। ऐसे श्रद्धान से शरणदारी के सिवा अन्य देवादिक झूठ भाषित हो तब स्वयं उनका मानना छूट जाता है। फिर उनकी श्रद्धा करे, उनकी भक्ति करे, क्या भक्ति करे? देखो भक्ति करने लायक एक भीतरा भाव है, सर्वज्ञता है, उनके द्वारा कहा गया तत्व ज्ञान है, तो उसकी तो महिमा है। धन्य है भीतरागी देव, आपने 18 दोषों को नष्ट कर दिया। पढ़ते न भीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहां, मार्ग बताया है जो जग को कर न सके कोई और यहाँ। भीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव, तो भक्ति आवे। जिसने स्वपर भेद विज्ञान बताया, जिसने पर से लक्ष्य हटा के स्वभाव का लक्ष्य करने का उपदेश दिया, यही सुखी होने का मार्ग है, तो उसके प्रति भक्ति आवे। जो स्वयं दुखी है उसके प्रति भक्ति कैसी होगी? वो प्योर मिथ्या तो के विष भरी होगी। वो मेरा उद्धार कर देगा, वो मेरा कल्याण कर देगा, उसने लाखों का कल्याण किया, ऐसी वाली होगी। समझ में आया ना? बहुत बढ़िया विवेचन है। ऐसे श्रद्धान से अरंतादी के सिवा अन्य देवादी झूठ भाषित हो तब स्वयं उनका मानना छूट जाता है। कहना नहीं पड़ता है, तुम यहाँ जाओ कि वहाँ नहीं जाओ, कि यहाँ मत जाया करो, वहाँ मत जाया करो, उसको ऐसा पक्षपात कर दे, वो इम्प्रेशन दूसरा हो जाता है। लेकिन जब से सुपर भेद विज्ञान की बात समझ में आए, वीतरागता की बात समझ में आए, राग से जीव दुखी है और वीतराग भाव से सुखी होता है, ये बात समझ में आए, तो जहाँ ये बात है ही नहीं, इससे उल्टी बात है, वहाँ की श्रद्धा अपने आप छूट जाएगी। तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ, अभी कौन सा प्रकरण चल रहा है? निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश का। ये क्यों यहाँ लिया गया? चरणानुयोगी शैली में दो तरह का उपदेश होता है, एक केवल व्यवहार का उपदेश होता है, एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश होता है। तो निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में अंतरंग परिणामों के साथ में बाह्य क्रिया का ज्ञान दर्ज है। वो ज्ञान कराने की स्टाइल है, ऐसा करो, ऐसा होता है, यानी ऐसा करते हैं, इस भाषा में ही उपदेश होता है। तो उसमें अभी सम्यक दर्शन वाला टॉपिक हुआ, अब सम्यक ज्ञान वाला। सम्यक ज्ञान के अर्थ संशय आदि रहित उन्हीं तत्वों को उसी प्रकार जानने का उपदेश देते हैं। अब इसमें कौन सी नई बात आ गई? ऊपर तो केवल अर्थाचार व्यंजनाचार इनकी बात की थी। ज्ञान का आचरण क्या बोला? ज्ञान का आचरण पक्ष बताया था ऊपर मात्र बोली। यहाँ कहते संशय विपर्यय और अंत बताए रहित ज्ञान है, वो है ना? संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लग लीजिए। उस जानने को कारण जिन शास्त्रों का अभ्यास है, बहुत सुंदर बात है। क्या? सात तत्वों को, प्रयोजन भूत तत्वों को संशय विपर्यय अनंत बसाय रहित होकर जानने के लिए क्या करना? शास्त्रों का अभ्यास करना। इसलिए प्रयोजन के अर्थ जिन शास्त्रों का भी अभ्यास स्वयमेव होता है उसका निरूपण कर, यानी अंदर में परिणामों की पहचान होवे, वस्तु स्वरूप की यथार्थ पहचान होवे, तो तदनुकूल बाह्य क्रिया स्वयं होती, ये कहना चाहिए। ये निश्चय सहित व्यवहार है। ऊपर तो उपदेश की भाषा है, व्यवहार प्रधान उपदेश में भैया शास्त्र पढ़ना चाहिए, चारों अनुयोग पढ़ना चाहिए। किसी अभी आगे सब आएगा, कोई एक अनुयोग का पक्ष होवे तो वो मार्ग यथार्थ नहीं है बराबर है। लेकिन जिसको तत्व ज्ञान होगा उसको चारों अनुयोगों का संतुलित स्वाध्याय स्वयमेव होगा, उसका निरूपण करते हैं। तथा सम्यक चारित्र के अर्थ राधा भी दूर करने का उपदेश देते हैं। ये निश्चय वाला उपदेश क्या? क्योंकि राधा जी का अभाव यानी वितराग परिणति ये तो चारित्र है। सकल कषाय विमुक्तम, कषाय रहित जो परिणति है वही चारित्र है। तो राधा जी दूर करने का उपदेश देते हैं। गिरिवान युग की शैली में बोलेंगे राधा जी दूर होते हैं ऐसा जानता है, है? आज के व्याख्यान में आपने ध्यान दिया होगा अविपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा दोनों की व्याख्या में एक ही बात गुरुदेव ने कही, पोषाक पूर्वक अंतरंग के पोषाक पूर्वक रागादिहीन होते हैं। रागादि का अभाव होता है उसका भी कर्ता नहीं होता, उसको भी जानता मात्र है। तो देखो गृहज्ञान योग की शैली में करने की बात नहीं है, जानने की बात है। अपन को समझ रागादि दूर करना ये तो बहुत ऊंची बात, अरे आचरण की बात है भाई साहब, ये भी आचरण की बात है, ये आत्मा का आचरण है, है? और रागा भी दूर करने के लिए जिन बाह्य क्रियाओं का आलम्बन किया जाता है उन बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते, समझ में आया ना? जिनसे रागा भी तीव्र होते हो, पांच इंद्रियों के विषयों के समागम में रहना और विषयी पुरुषों के समागम में रहना, पांच इंद्रियों के विषयों का समझ लो अनर्गत भोग भोग करना, तो वैसे ही रागा भी तीव्र थे न वो विषय कसाई की पूर्ति में, और रागा भी तीव्र होते तो उनसे बचने का उपदेश देते हैं। प्रयोजन क्या है रागा भी दूर करने का? हो गया मैंने कोई ऐसे विकरागता बिल्कुल उसके अंदर छुपी हो गए और दिखती नहीं हो गए ऐसा नहीं है। वो प्रयोजन थोड़ी अपनी दृष्टि वैसी हो गए तो वो प्रयोजन स्पष्ट समझ में आता है। सम्यक चारित्र के अर्थ राधा जी दूर करने का उपदेश देते। तो वहां एक देश व सर्व देश तीव्र राधा जी का अभाव होने पर उनके निमित्त से जो एक देश व सर्व देश पाप क्रिया होती थी वो छूटती। तीव्र राधा जी का अभाव होने पर यानी असंयम दशा में राधा जी तीव्र है क्या? अगर संयम नहीं है तो भले वो दुनिया में बहुत शांत बैठा हो, मंद कषाय वाला जीव हो, लेकिन संयम के भाव नहीं है तो समझना रागादी तीव्र है। और रागादी वो तो जो नेचर है उसके हिसाब से और जैसी परिस्थितियां हैं तो बाहर में भले कषाय मंद दिखे लेकिन बाह्य क्रिया मात्र से कषाय की मंदता तीव्रता का नाप नहीं होता। वो तो अंतरंग कषाय अभी दादा ने कितना सिद्ध किया ख्याल में आया ना किरीट भाई, डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया पॉइंट लिया तो सर्वा सिद्धि के देव भी दुखी है। क्यों? असंयम है इसलिए दुखी। अपने क्या दुख है उनको बताओ, न दुकान है न धंधा है न व्यापार है न शेयर मार्केट है न टैक्स है न कैंसर है न सर्दी है न दुकान है, कुछ भी तो नहीं है। दुख किस बात का है? अरे ये दुख के कारण है ही नहीं, तो अपन ने मान रखे मोह के कारण, समझ में आया? लेकिन संयम की परिणति नहीं है, विषयों की वासना चालू है अंदर में इसलिए दुखी। तेज आगादी तीव्र आगादी का एक देश अभाव होवे तो अणुव्रत और सर्व देश अभाव होवे तो महाव्रत। एक देश व सर्व देश पाप क्रिया होती थी वो छूटती है और मंद राग के मंद राग से श्रावक मुनि के व्रतों की प्रवृत्ति होती है। ये मंद राग की भूमिका में निमित्त निर्मित संबंध अमृत महाव्रत से है। और भैया मंद राग का भी अभाव होने पर शुद्धोक योग की प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपण करते। कौन से अनुयोग की बात है? चरणानुयोग। शुद्धोक योग को कौन से अनुयोग में लिया? चरणानुयोग में। किस प्रकरण में लिया? निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में। और बाद में फिर और विषय आगे बढ़ा है, अपना जो मूल प्रकरण बताने का था वो अंश इसमें आ गया है। कोई और कोई विशेष बात होगी तो उसकी भी चर्चा अपन करेंगे, अभी का समय हो गया इसलिए नहीं।
आइए देवेंद्र जी।